ओम शांति। आज की मुरली है सेवा। सेवा की शुरुआत कहां से करनी है? अपने घर से करनी है। इसलिए बाबा ने कहा चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहली चैरिटी है अपना परिवार। बाबा ने कहा अगर दोनों ज्ञान में नहीं चलते, पूरा परिवार नहीं चलता, तो जैसे हंस और बगुले, तो कैसे साथ में रहेंगे? किट-किट होती रहेगी। दूसरा बताया, बाबा कहीं गीता पाठशाला बाहर की होगी, वहां गए होंगे, वहां 6 फुट का कृष्ण का फोटो देखा होगा। तो बाबा ने कहा वहां जाकर समझाना चाहिए कि ये राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, वो कौन थे। अगर आप गीता का भगवान कहते हो तो गीता कब सुनाई, कैसे सुनाई, क्या सुनाया। दूसरा, शिव जयंती मनाते हैं। जयंती माना बर्थडे। तो जब निराकार शिव है तो वो कैसे आया, किसमें आया, कब आया, और आया तो क्या किया, ये पूछो। तीसरा, कृष्ण को और राम को काला क्यों दिखाते हैं, पूछो। बाबा ने कहा जब ये सवाल पूछेंगे तो समझ जाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके सिवा ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता। और जब क्लियर कर बताओगे तो समझेंगे कि बीके में तो बहुत ज्ञान है, तुम ज्ञान से भरपूर हो। ये भी बताया जो अपने घराने का होगा, अपने कुल का होगा, उसको इन सब बातों की टचिंग होगी, नहीं तो बंदर के आगे पत्थर। वो तुम्हारे ज्ञान रत्नों को पत्थर समझ फेंक देंगे। और विशेष बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व बताते हुए, अमृत वेले कैसे बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करनी है, क्या बातें करनी है, अपने आप से क्या प्रतिज्ञा करनी है, वो बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। और लास्ट में कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, उसको मैं याद करता हूं और उसे प्यार करता हूं। तो आज की शिक्षा को बाबा के मधुर शब्दों में सुनेंगे। आज है 1 सितंबर 2026। मीठे बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिंस का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एकरस बना सकते हैं? एकरस अवस्था बनाने के लिए कौन सी श्रीमत जरूरी है? उत्तर है, अवस्था को एकरस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है। बच्चे, रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे ही सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने से प्रतिज्ञा करो। अपने आप से क्या प्रतिज्ञा करो? कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे और किसी को करेंगे नहीं। ये अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है रोज अमृत वेले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचते ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं, वो बाप स्वर्ग का रचयिता है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? ज्ञान सागर के साथ बैठे हैं। ये तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक श्री कृष्ण का लंबा चित्र 6 फीट का था। बाबा कहीं गए होंगे और वो लंबा 6 फीट का चित्र देखा होगा। अब श्री कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, अधिकतर उसका बाल रूपी दिखाते हैं। फिर कहते हैं गीता का भगवान था, तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में वह जब 6 फीट का हुआ तब सुनाई? कब सुनाई? राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? हम तो राधे कृष्ण साथ में दिखाते हैं ना, कई समझते हैं वो तो उसकी फ्रेंड थी। राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। अब इन दोनों का क्या संबंध है ये किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो तो जो सत्संग में सुनाते हैं सत सत करते रहते हैं, कोई अपना दिमाग चलाएगा ही नहीं। दिमाग चलाने वाले तो कौन है, बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान किसने दिया, उनको बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धिवानों का बुद्धिवान साथ में है, बुद्धि देने वाला साथ है। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वो सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे, वो कुछ सवाल नहीं करेंगे, पांव पड़ेंगे, सत सत करेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती, तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाती है, तुम पूछ सकते हो। अब दूसरा सवाल, एक कृष्ण क्या हुआ, अभी शिव के मंदिर में जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो ये दूसरा सवाल तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वो कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, वो कब आया। शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर है नहीं, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है, आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे, आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती है, तो जो बर्थडे मनाते हैं किसका मनाते हैं, शरीर का मनाते हैं। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है, तो तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए, यहां से अपने घर धंधे दोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती है। बाबा के सामने आते हैं, क्लास में जाते हैं तो उमंग आता है कि हाँ ऐसे सर्विस करनी चाहिए, फिर घर गए तो घर व्यवहार में भूल जाते हैं, चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अगर कहेंगे गुरु से ये सवाल पूछो तो कहेंगे नहीं, अरे हमारा गुरु तो बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, हम उनको कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब को निश्चय होगा कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें बता रहे हैं, तो समझाने की भी हिम्मत आएगी। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, माना जो भी सत्संग में जाते हैं सत सत करते रहते हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है परंतु वो है कौन, उसने क्या आकर किया और कब आया। जयंती माना ही बर्थ, जयंती मनाते हैं माना ही वो कब आया होगा, कुछ सुनाया होगा, कुछ किया होगा। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वो तो निराकार है, तो फिर उसका बर्थ कैसे मनाया जाता है, किसमें आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया, माना जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है, जब तक शरीर में नहीं आवे तब तक जन्म नहीं कहेंगे, बर्थ नहीं कहेंगे, तब तक उसका बर्थडे नहीं मना सकते। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पार्ट बजाने के लिए, वो तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया? ये उनसे इतने सवाल पूछने हैं, बाबा सेवा के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। किसमें आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है, ये किसको भी पता नहीं है। जितना बाबा ने हमको क्लियर कर बताया है, हमारे पास जितना क्लियर ज्ञान है इतना और किसी में नहीं है। बल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है और कोई बात करनी नहीं है। कोई कोई दो तीन वर्ष आते हैं, फिर क्या होता है, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। लौकिक में गए, संग में आए तो क्या होगा, अज्ञान ही आएगा। फिर ये जो इतना ज्ञान का उमंग है, बाबा ने नशा चढ़ाया है, पुरुषार्थ कराया, वो सब भूल जाता है। फिर बाबा क्या करेगा, जब अज्ञान आ जाएगा बुद्धि में तो क्या होगा, फिर बाबा क्या करेगा? बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं ना, फिर बुलाते हैं, फिर उमंग दिलाते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए, तो हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रहेंगे, खिटखिट होगी ना। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए, माना परिवार में ज्ञान देना चाहिए। जो भी पहले ज्ञान में आता है, पहले अपने साथी को ज्ञान दो, अपने परिवार को दो, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ दो, अपने मित्र संबंधियों को दो। पहले सेवा की शुरुआत वहाँ से करनी है। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। फिर जो अगर भाई कोई ज्ञान में चलता है, तो फिर उसके पीछे उसके युगल को भी चलना चाहिए। ये यहाँ की बात है। बाबा कहते हैं, लौकिक में कहते हैं ना, पति ईश्वर गुरु है, तो जब वो उसको ईश्वर गुरु मानते हैं तो वो ज्ञान में चलता है, तो तुमको भी चलना चाहिए। वहाँ तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं। कहाँ, सतयुग में, सतयुग में तो एक दूसरे की आज्ञा मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है, सब प्यार से आपस में चलते। वहाँ कोई ऐसी बात होती ही नहीं जो ऐसा एक दूसरे का मानना हो। तो चैरिटी बिगेंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है, तो क्या करना है, छोड़ देना है, बू बू करनी है उसको, कुछ ना कुछ युक्ति से सुनाते रहना है। अगर डायरेक्ट नहीं मानते तो कुछ ना कुछ और युक्ति रचनी है। बच्चों को भी भू भू करना है, अपने हमजिंस का कल्याण करें, उनको भी बताएं बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, ये बताना है परिवार को। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? ये उनको समझ देनी है कि अभी तो ये दुनिया खत्म होने वाली है, समय बहुत समीप है। माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिंस का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए, यहाँ तो बहुत है, कितना याद करना चाहिए ये बता के क्या हुआ बाबा को। कई यहाँ बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं होगा, यहाँ तो बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा इतनी पालना करते हैं तो बाबा को याद ही ना करें ये कैसे हो सकता है। सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं, बाबा के पास तो सारा समाचार पहुंचता है, नहीं तो क्या करना चाहिए। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए, बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा देखो सिखा रहे हैं अमृत वेले उठ करके कितनी मीठी मीठी बातें करनी है, तो जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, तो बाबा भी हमको बहुत प्यार से सिखाते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, अंदर में अपने से बात करना उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ये अमृत वेले बात करनी अपने आप से। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सत्युगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे, ये बाबा से प्रॉमिस करनी है। 63 जन्म हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा देखो कितना सारा कमेंट्री सीखो कि सुबह सुबह अपने आप से बाबा बातें करना सिखा रहे हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो क्या होगा, विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर बाबा से प्रतिज्ञा करनी है और बाबा जैसे कहते हैं ऐसे अपने आप से बातें करनी है। मौत का डर है ना बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे, फिर देखना चाहिए। ये अमृत वेले बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा से रू रियान की, फिर रात को क्या करो कि वो हमने प्रतिज्ञा की, बातें की, वो सारा दिन हुआ कि नहीं। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, कोई भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई बहाना नहीं कि आज ये हुआ आज वो हुआ तो याद छूट गई, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं, अगर ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, तीव्र वेग के पुरुषार्थ में लग जाएं, तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी, याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे अब बाबा एग्जाम्पल देते हैं सेवा के लिए, उमंग भरते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। किसका एग्जाम्पल दिया होगा? जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नंस बहुत फिरती रहती है, घरों में दुकानों में जाती है, सबको कहती है बाइबल लो, ये लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है। उनों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं, उन्हों को ये आइडिया नहीं होता है। वो जॉब भी देते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उनका पर्पस है क्रिश्चियन बनाना। तो बाबा कहते वो इतनी मेहनत करते हैं तो तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा का बनाने के लिए, उनको अपना सत्य परिचय देने के लिए, अपने पिता से सत्य मिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, बल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कार्य करते हो, लिख के जाते हैं ना लास्ट में। पहले तो क्या था, कोई भी आता था उसको समझाते थे, लास्ट में बाहर एक बुक रहती थी उसमें ओपिनियन लिखवाते थे कि आपने ये प्रदर्शनी देखी, आपने ज्ञान सुना, आपको कैसा लगा। बाबा कहे बाहर गए खलास, लिख कर जाते हैं अच्छा अच्छा, फिर बाहर गए तो बाहर की हवा लग जाती है। इसके लिए गाया हुआ है, ऐसे के लिए क्या गाया हुआ है? अच्छा लिखा, अच्छा लगा भी, बाहर गए तो खलास, तो ऐसे के लिए गाया हुआ है बंदरों के आगे रतन रखो तो वो पत्थर समझ फेंक देंगे। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझकर फेंक देते हैं, ये भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हमारे धर्म का नहीं है करके छोड़ देना। उसको बार 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 बताते बताते जब उसका पार्ट होगा तो खुल भी जाएगा। कईयों का देरी से भी खुलता है, एक बार समझाने से नहीं भी ताला खुलता है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, बाप भारत में आते भी एक बार ही है। बाप कहते हैं, तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ। किस लिए आया हूँ? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो, हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। इतना हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे साथ कौन है, हम किसकी मत से ये सेवा कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी है, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवानु वाच्य, क्या है शिव भगवानु वाच्य? जब हम बाबा से इतनी प्रॉमिस करते हैं तो बाबा हमारे से क्या प्रॉमिस करते हैं? मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना, सन्यासियों को भी ये ज्ञान सुनाना चाहिए। सुनते भी हैं अभी, और कई बाबा के बनते भी हैं, समझते भी हैं, पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। वो कहते हैं ना पतित पावन सीताराम, सीताराम माना सीताओं के राम। हम सब आत्मा रूपी सीता, हमारा राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं, सब है भक्तियां अथवा सीताएं। हम सब यहाँ कौन बैठी है? सीताएं, आत्मा सब सीताएं हैं। वो पुकारती है, हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, कौन से राम की बात है? शिव बाबा राम, तीन राम है ना, कहते एक है निराकार राम, एक त्रेता युग का राजा राम, और सब आत्माएं भी है राम, निराकार है। मुख्य भूल है ही ये, जो शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए श्री कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है? सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। अब ये भी सवाल पूछो, अभी बाबा ने सेवा की विधि सिखाई है तो क्या क्या पूछना। अभी ये भी पूछो कि राम को कृष्ण को काला क्यों दिखाया है? पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हट छोड़ेंगे नहीं, दूसरों को जाके ज्ञान देंगे तो हमने सुनाया और वो फट से समझ गए, ऐसा होगा नहीं। जल्दी अपनी हट छोड़ेंगे नहीं। जाड़ की आयु बड़ी होती है तो जाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है, तभी जर्जरी भूत हो गया है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, टोटल प्रलय नहीं होती है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, चेंज होता है। यही सृष्टि को बाबा रिजुनेट करते हैं, चेंज करते हैं। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे ना। जब बहुत पतित बनेंगे तब तो पावन बनाने आएगा। खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प, क्या कहते हैं बाबा? खुद कहते हैं डायरेक्ट आकर क्या कहते हैं? मैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे आता हूँ पावन बनाने लिए। अभी है संगम, अभी बाप सबको सद्गति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना, पक्का चलना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाना है। कैसे जमाएंगे? सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? बाबा क्या कहते हैं? हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वही सुनो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, और कोई तो है नहीं। तो जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है तो उसकी बात सुननी चाहिए। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, तो इतना दूर से आकर पढ़ाते हैं तो उसका ही तो सुनना चाहिए। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। हमने आधा कल्प भक्ति क्यों की? भगवान मिले। अब जब मिल गया तो फिर और रास्ते पर क्यों जाते हैं? वह तो सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप के सिवाय ये नॉलेज कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वो बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं, तुम मुझे कहते हो परमात्मा, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? कहेंगे? नहीं कहेंगे। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वो तुम्हारा बाप है, वो आकर इसमें प्रवेश करेंगे। वो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके हमको बताया ये सब। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, वो परम धाम से आकर के कहाँ बैठेगा? बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में ही बैठेगा। गुरु कहाँ बैठेगा? शिष्य के बाजू में बैठेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वो हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखाया था। क्या सिखाया था 5000 वर्ष पहले? हमें क्या बताया था? कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो तो क्या होगा? ये सब बातें कहाँ बताई बाबा ने? संगम पर बताई। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना, इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे। ये टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। कितनी बड़ी प्रॉमिस है, कितनी गारंटी है। इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं कर सकता है। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं, अब मंत्र लास्ट सुनो, बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। क्योंकि क्यों? जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बाबा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे मददगार हैं, दुनिया को बदलने में, नई दुनिया बनाने में मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वो मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे बाबा, पहले से सावधान भी करते हैं। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। कोई जो सच्चे भगत होते हैं ना, जो ध्यान में बैठते हैं, कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प आता है तो अपने आप को चमाट मारते हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। चलो देख लिया, साक्षात्कार हो गया, उससे क्या? फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। ये कॉलेज है ही, कौन सी कॉलेज है ये? सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने की। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं, दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, संगम पर राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सब हो गए ना सेवा के लिए तैयार? बाबा ने कितनी विधि सिखाई, कितना उमंग भरा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का वरदान भी उसके अंतर्गत है। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य भव। उसका क्लेरिफिकेशन है, कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है क्या होता है? सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। आज का स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अब इस आज से सितंबर पहली तारीख है ना, तो नया होमवर्क मिला है, ये अव्यक्त इशारा, तो आज से ये शुरू करना है। पूरा महीना हमको अलग अलग पॉइंट्स मिलती रहेगी। अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत वर्तमान समय आप बच्चे अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपके सब भंडारे निरंतर खुले रहने चाहिए। अनादि आदि दातापन के संस्कार अपने जीवन में सदा इमर्ज रख। परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैलाओ। बेहद के दाता बन वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो। बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। महान दाता बनो, सिर्फ दाता नहीं महान दाता बनो। तो आज से ये भंडारा खुला रखेंगे और महीने के अंत में देखेंगे क्या क्या दिया और किस किस बातों में मनहूस रहे। अच्छा, ओम शांति।